अर्थदम्। श्री प्रह्लादो वाच कोमारः आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रह्लादो वाच कोमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रह्लाद उवाच। प्रह्लाद महाराज ने कहा कौमार बाल्यकाल में आचरित अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान् वृत्तिपरक कर्तव्य भागवतान् भगवान की भक्तिमय सेवा यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म जन्म तदपि वह भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रह्लाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारे उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य तथा प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्म को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णय से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों को प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या बढ़ने न देने के लिए एक गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि दैवयोग से बालक बच जाता है तो इसे इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकुर और शुकर की भांति जी रहे हैं। 84 लाख निम्न जीव जोनियों में ध्यानतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा सके। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे राम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। कहाँ गए होगा लड़का? पीला कपड़ा में उड़े गए ना? तो कुकिंग की बात क्लास करें, ये अच्छा रहेगा ना? आप लोग खा पी लो, फिर बाद में करते हैं। पूछो प्रभु जी को, पूछो बोलो अभी क्लास बंद कर दें तो आप लोग समाधान करो। ऐसा क्या है ना? क्या करें? तो अभी गुड़ाकृष प्रभु कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे आपके? अच्छा, शुरू से शुरू किए थे क्या?
उपक्रम समझाया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कल फोर्थ चैप्टर में एंटर किया था लेकिन पूरा नहीं
हुआ। चलो ऐसे अभी परसों केवल आपके स्कंद जोधपुर में नहीं, पूरे विश्व में जितने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत के केंद्र हैं, छोटे मोटे सब, सभी में बड़े श्रद्धा के साथ उपवास व्रत रख करके श्री नरसिंह भगवान के आविर्भाव तिथि को पालन करेंगे। हर साल आप लोग भी करते हैं, है ना? नहीं, जब से आप इस संस्था में साथ जुड़े हैं, केवल साल में एक बार नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली कहा जाए एवरी डे, केवल एवरी डे नहीं प्रतिदिन प्रति आरती के उपरांत, नरसिंह जी को याद करते, केवल आरती के उपरांत नहीं, जब गाड़ी में बैठे मोटरसाइकिल में बैठे रास्ता में चले वो नरसिंह के ठिका लिए हैं वही हम नहीं नमस्ते गाए नहीं अपने साइकिल चलाए गाड़ी चलाए नमस्ते बोलो, किसको नमस्ते करते हैं सब जानते हैं इसको नमस्ते करना चाहिए। तो नरसिंह देव के साथ इष्कन भक्तों का जितने संबंध है, मैं तो कई जगह में जाता हूं कंग्रेगेशन में भारत में अन्य अन्य स्थान में भी भारत बाहर में भी, वहां देखता हूं कि जो इवनिंग परिक्रम होता है 8:30 से 9:30 बजे तक होता है रात को, तो फिर जब लेक्चर अंत होता है तो बोलते हैं थोड़ा आरती करेंगे, आरती सजावट करके आरती सरफ करके आरती करना नरसिंह आरती, अरे डीटी राधा कृष्ण का होगा कुछ भी होगा लेकिन अंततः वही आरती होता है। कंग्रीगेशन लोग भी जो जुड़े हैं अभी नया नया जो जुड़ने भी चाहते हैं उनको आरती मतलब नमस्ते नरसिंह है वैसे भी कहा जाता है वही आरती होता है ना, नहीं तो इतने ओत प्रत भाव से जड़ित हैं। तो इस समुच्चय कृष्ण भक्ति के संस्था विशेष करके जो पूर्ण विश्व में सारे विश्व में कृष्ण भक्ति के जो प्रचार करने के लिए जो संस्था है उनके साथ भगवान नरसिंह देव का बहुत निकट संपर्क है, बहुत अच्छे तरह से जुड़े हैं, है ना। तो इसलिए इस नरसिंह भगवान की जयंती आविर्भाव तिथि अभी ट्यूसडे है, अभी काल छोड़ के परसों दिन है, तो आप लोग भी यहां पे हो जहां जहां पे जैसे कोई घर में कोई वेश में कोई बाहर में जहां भी रहेंगे अवश्य करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फलाहार तो करेंगे जलाहार करेंगे थोड़ा फास्टिंग करेंगे। तो और नरसिंह भगवान के चरित्र आप जिस दिन से इस्कन के साथ जुड़े उस दिन हर ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि को आप पालन करते होंगे, और नरसिंह भगवान तो वही है उनकी लीला भी वही है उसको सुनते ही होंगे, ऐसा बात नहीं कि कुछ खूब रिपीटेशन जो जितना साल के एक समय हुआ इतने साल सुने होंगे, इतने साल नरसिंह जयंती किए इतने साल वही सेवंथ कांटो चल रहा ही है ना नहीं? लेकिन ये जो नरसिंह भगवान है ये पहले थे ना आए हैं ना उनके पीछे रहस्य क्या है, ये अगर आप जानने के प्रयास करेंगे तो भागवत प्रमाण करता है कि नरसिंह भगवान पहले नहीं थे, वो तो खास ये मेकअप करके आए, ये ड्रामा उन्होंने किए केवल किसके लिए सलाद के। ये पांचवां स्कंद में फिफ्थ चैप्टर में चौथा स्कंद में तो साथ उनके भाई मर गए उनको समझाता वही सब आया होगा, हिरण्यकश्यप की मृत्यु उनको गीता क्लास दे रहा होगा हिरण्यकश्यप उनके परिवारों को है ना, तो उसके बाद में उन्होंने झगड़ा उन्होंने उठा मार मूड करने के लिए मार पड़ी सब गीता समझाने के बाद फिर भूल गया क्लास के बाद तुरंत भूल गया कि क्या होता है क्या पूरा आत्मज्ञान था उसका भक्तिशास्त्र क्या था उन्होंने टीचर से भी किया था टीटी से भी किया था उन्होंने आरडी से नहीं टीटी से भी किया था वो क्लास दिया उन्होंने वो इतने सुंदर कथा बताया उनके लेक्चर के प्रभाव से उनके उनके परिवार के लोग उनके भतीजे वगैरह जो सब होंगे सब समझ गए और शोक मुक्त हो गए। इतने उदाहरण देख समझे जैसे उनको समझा दिया तो सब भूल गया ज्ञान तो गए मारने के लिए हम ऐसे हैं ये हैं विष्णु को मारूंगा। तब जा करके घोर तपस्या करता है पहले विष्णु को तो जाता है मारने के लिए ढूंढ कर आता है विष्णु को नहीं मिला नहीं मिला आकर डिक्लेयर करता है मर गया तो भाग गया चलो अब मैं ही विष्णु हूं विष्णु जागा में अपना नाम लगा दिया सब जागा में एडिट करके अब बोला कि विष्णु को इसी पार नहीं पा सकते, तपोबल तपस्या से बल प्राप्त करेंगे, बाकी ये जिम खाना में जाकर बल नहीं होगा। तो तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत गया, महेंद्राचल में, वहां तप करके, तब जब कर रहा था, बड़ी लंबी कथा है, तपस्या करके कई हजारों साल उन्होंने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को जब देवता लोग जाकर बोले जो इतने कठोर तपस्या किया, शरीर गल गया था उनका, खड़े होकर कैसे करके खड़ा, नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण्य देवाय कर रहा था, पंजे पर खड़े होकर, सीधा भी नहीं, ऐसे 36,000 साल तक। आप 36 दिन खड़े हो सकते, 36 मिनट 36,000 से कितना डिटर्मिनेशन पावर उसका था, जस्ट इमेजिन, सोचिए। हम लोग काल एकादशी था हरिव्रत, तो काल तो कितने दो बार तो लिए होंगे, लिए हैं, और आज सुबह पारण सम हो गया, क्या करते हैं, क्लास जाने तो यार बड़ा प्रसाद नहीं बन रहा है। और उन्होंने आसुरी शक्ति खूब खाता होगा, उन्होंने अनशन खाता हो, लेकिन जब उन्होंने मन बनाया तपस्या करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए जब वो डिसाइड किया, तो हजारों सालों तक, 36,000 साल तक एक स्थान पर हाथ उठाकर खड़ा रहा, मंत्र जप करा, खाना पीना सोना फॉरगेट, नाना धोना कुछ नहीं। हम 2-3 बार खा करके सब करके नहा धो करके तो वहां रखना पड़ता, तो कितने डिटर्मिनेशन पावर चाहिए, कितने धैर्य, कितने निश्चयात्मिका शक्ति उनका कितना था। तो उन्होंने करके ब्रह्मा जी को बाध्य होना पड़ा, सारे देवताओं जाकर ब्रह्मा जी को बोले सर पता है ना किस लिए कर रहे हैं, बोले आपके सीट को लेने के लिए, आपके पोस्ट को बोले छीन लेगा आपसे, ब्रह्मा जी डर के भी लेना, वो हम जैसे पोस्ट को चाहता नहीं, वो तो सीधा ब्रह्मा जी उनकी पोस्ट ले लूंगा, और ऊपर तपस्या उन्हीं को कर रहा था, बोले आपको पटा करके आपको ही मारेगा, देवता असुरों का वही बुद्धि होता है, जिनको सेवा करेंगे उनके ही खाएंगे, उनके ये असुरी बुद्धि होता है, प्राय लोग आजकल भी यही करते हैं। तो ब्रह्मा जी को लेकिन ऑप्शन नहीं था, देव जानते थे मेरा शत्रु है, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो आ करके मुंह मांगी बार दिया उनको, जो बार मांगा और ओके 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 प्लीज स्टॉप इट, बहुत ज्यादा मत तप करो, जो चाहिए सो दे दी, लंबा लिस्ट पकड़ करके सारे सैंक्शन करा लिया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने वो इच्छा न होते हुए भी कोई उपाय नहीं था, सैंक्शन कर दिए सारे, सैंक्शन करके दुखी होकर आए, बोले क्या करूं, अब वो सारे शक्ति प्राप्त करके, दिव्य शरीर दिव्य शक्ति प्राप्त करके शुरू किया अपना प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट था, टेररिजिंग द यूनिवर्स, ये उनका प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नाम होता ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट टाइटल थे क्या, टेररिजिंग द होल यूनिवर्स, ऐसा तो प्रोजेक्ट आप लोग कब किया, अभी आप लोग तो उनका समान नहीं है पूरा यूनिवर्स को सताना शुरू किया, और क्या जबरदस्त शक्ति था उसका, ऐसे सताना शुरू किया, थोड़ी दिन में सारे देवताओं कृपा करके ब्रह्मा को शिव को विष्णु को छोड़ दिया, एग्जेम्पशन दिया था, तो बूढ़े हो गए आप लोग जाने, उन तीनों को एग्जेम्पशन दिया था, वो भी डरे मरे बैठे थे, कभी थप्पड़ ना लगाए उनको, डर के मारे नहीं उनको काम नहीं करा रहा था, बोलो चलो बूढ़े हो गए बैठे, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कोटा में इन तीनों को डाला था, उन तीनों को छोड़ करके बाकी समुचे देवता दक्षिण राक्षस गंधर्व किन्नर सुबह मंगल आरती के समय से, हाँ जी ड्यूटी बजाएंगे सर, आ गए सर, बोलिए सर क्या करें, सबको ड्यूटी लगा रखा, वो बेचारे उनको पेमेंट भी नहीं देता था ना, बिना पेमेंट बेटी घटते थे देवता। ये बात कौन कहता, स्वयं नारद जी कहते हैं, स्वयं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर क्या बता, मैं भी उनमें ड्यूटी में था, हम क्या ड्यूटी का था, मैं अखंड कीर्तन में था, मैं 24 आवर कीर्तन डिपार्टमेंट में था, मेरे साथ नाम लिए सब ये तंबरू गंधर्व सब मेरे साथ थे, हमारा शिफ्ट ड्यूटी चलता था, कंटिन्यू शिफ्ट करते थे, बोले अच्छा पानी भी नहीं पूछता था वो, लग्न करते थे, बोले कौन सा कीर्तन था, हरे हिरण्य कशिपु हरे हिरण्य कशिपु कृष्ण हिरण्य कशिपु, वो मंत्र गाते थे 24 घंटे कीर्तन चलता था, वो शिफ्ट समय भी शिफ्ट था 6 घंटा का, ना जो होता था मैं भी करता था वो क्या करे यही से भय पीटता था, वो करना पड़ता था, वो सारे करते थे, लेकिन करते करते हजारों साल तक किए, अब कितने किस कोई पूछेगा नहीं, खाना पीना पैसा नहीं देगा, कितने करेंगे बेचारा, मर गए काम करते करते, इतने दुखी हो गए सारे देवताओं, बोले और क्या करे, उपाय नहीं हो, कोई रास्ता ही नहीं हो, पूरे संसार को न जय करके रखा था, प्रकृति अपना हाथ में था, जो कुल के ब्राह्मण यज्ञ करते थे, यज्ञ से देवताओं खाते हैं, यज्ञ मुख्य यज्ञ करके हवन डालता था, मना करते कोई देवता नहीं खा सकते, सारे यज्ञ का जो भाग है सो मेरा पास आएगा, वो चैनल कर लिया था रास्ता बंद, यज्ञ को दरा भी कोई प्राप्त नहीं हुआ, सब भूखे रहते, सारे यज्ञ होती स्वयं खा जाता, और सारे रात दिन ये जो प्रकृति का अपना हाथ में नहीं लिया था, भगवान कहते हैं कि मया अधिक्षण प्रकृति, लेकिन कुछ दिन के लिए भगवान की अध्यक्षता से हिरण्य कश्यप की अध्यक्षता में प्रकृति चला, हाँ यस, मुझे किसी ने मेरी बात बताओ तो पूछा, बोले ये किसी भगवान गीता में कहते हैं मया अधिक्षण प्रकृति सुयते सचराचर, भगवान कहते हैं लेकिन उनको कुछ दिन के लिए दिए थे, तो वो थोड़ा छुट्टी लिए, बोले आप ही चलाओ भगवान उनको दिए थे, प्रकृति के अध्यक्षता स्वयं करता था, पूरी प्रकृति की समुचा अध्यक्षता अपने हाथ में ले लिया था भगवान, दिए थे उनको, तो इतने बड़े शक्तिशाली संपन्न हो करके देवताओं के कष्ट, तो देवताओं ने कोई उपाय ना पा करके भाग करके आए, छिपने के लिए, बोले स्वर्ग में तो राजा बने, स्वर्ग में तो कोई छिपने का रास्ता ही नहीं था, सारे घूमना स्वर्ग से दौड़ करके इस धरती पर आए देवता लोग, सारे आकर कोई हिमालय में कोई गुफा में कोई जंगल में कोई झाड़ी में कोई छिप छिप करके भगवान को प्रार्थना कर लो, प्रभु हम जानते हैं आपको, आप ही कॉल कर सकते हैं, हम मर गए, आप पता नहीं क्यों चुपचाप बैठे हैं, सब पावर देकर उनको बचाए, नहीं तो हम मरे, अब क्या करें, हम फास्टिंग कर करके मरेंगे, उन्होंने अब एक दिन का व्रत करेंगे, कई सालों तक व्रत किए सारे देवताओं, इतने बोले मर रहे हैं इसे मरेंगे, फास्टिंग करके मरेंगे, अभी आपके भरोसा है, भगवान की इतने भरोसा में आकर के उनके व्रत किए, उनके तो भगवान ने प्रकट हुए देवताओं के सामने, प्रकट तो नहीं हुए, फोन करके बोले उनको, भगवान बोले क्यों रो रहे हैं, मैं जानता हूं, आई नो, मुझे पता है आप लोग का तकलीफ क्या है, और यही है ना हिरण, हाँ साल इतने परेशानी कर रहा है, बोले नो प्रॉब्लम, मुझे पता है, आई विल टेक केयर ऑफ सर, तो आप हजारों साल से इसी बोले, रो रो कर बोलते थे, बोले शब्द नहीं बोलने के, बोले कोई बात नहीं, और थोड़ा देर वेट करें, और वेट करें, वेट करो कब तक और क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है बदमाशी कर रहा है, लेकिन मैं एक्टिव तब होता हूं जब गो ब्राह्मण और मेरा भक्त कोई परेशानी होते हैं, तो इसलिए मुझे एक्टिव होना पड़ता है, ये श्लोक जब कहते हैं, मैं श्लोक पर उनको बुलाता हूं, देखो भगवान के श्लोक है, अब देखिए चौथा स्कंध में से पांचवा स्कंध में पांचवा अध्याय होगा, भगवान ने श्लोक जब कहते हैं उसका तात्पर्य यही होना चाहिए, बोलते हैं कि देवताओं ने रो रो के प्रार्थना करते हैं, और भगवान कहते हैं मुझे पता है, अब मैं तभी एक्शन लेता हूं जब ये इनको परेशानी होता है, तो इसलिए आप वेट करो, उसका ध्वनित अर्थ यही होता है कि आप लोग मेरे भक्त नहीं, इस कोटि में नहीं है, गाय के समान भी नहीं है, आप ना गो ब्राह्मण भक्त आप नहीं है, सकता मैं तो आप है, चलो मुझे पता है आप रो रहे हैं, वेट, बोले कब तक, ना जब तक कोई एक मेरे निज भक्त परेशानी हो करके मेरे पुकारेंगे तब मैं आऊंगा, आप बुलाने से थोड़ी आऊंगा, मैं फोन करके बोल दिया, वो वेट कर, तो भगवान के इतने आश्वासन वाक्य को फोन पा करके सारे देवताओं खुश हो गए, उनका बुखार उतर गया, रोने भंग, भगवान बोल दिया वो मार देंगे उसको, लेकिन कब मारेंगे, कोई उनका भक्त, कोई भक्त के लिए प्रयास करते हैं और क्या करेंगे, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, तो भगवान को पूछे थे उन्होंने, सर भक्त कहाँ आएगा, किस भक्त, बोले देखो उन्हीं का एक बेटा होगा, भगवान ने फोन में ये भी बोले, बोले उनका एक बेटा होगा जो मेरा एकांत भक्त होगा, और उस बेटे के प्रति अत्याचार करेगा, मैं सहन नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा के सैकड़ों वरदान क्यों ना हो, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कितने भी ब्रह्मा सारे देवता बर्बाद हो, कुछ ही नहीं मानूंगा, सारे नियम तोड़ ताड़ करके मार डालूंगा उसको, चाहे कितने ब्रह्मा वर्ष बलिदान क्यों ना हो, मैं काट निकाल दूंगा उसको, सुना डालूंगा। लेकिन जब तक मेरे इससे भक्त हो, भक्त जब देवता ने पूछे कौन है, बोले उन्हीं के बेटा भक्त होगा मेरा, है जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर उनका प्रोडक्शन के चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा बताओ। हिरण्यकश्यप जैसा महाराक्षस उन्हीं से प्रोड्यूस हुआ महाभक्त, भगवान की विधान ही बड़े अद्भुत। तो देवताओं ने बात सुन करके खुशी हो गई, बोले काम बन गया, काम बन गया, चलो और क्या। बोले क्या, अभी तो कैसे कैसे जाकर के हिरण्यकश्यप के बेटा पैदा करवाना है। बोले तीन बेटा तो ऑलरेडी थे हिरण्यकश्यप, तीन पुत्र ऑलरेडी थे, लेकिन इसको जूनियर हिरण्यकश्यप थे, उसी थे पिता के जैसे, मैंने जो जैसे मैन्युफैक्चरर है, जैसे इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे माल निकलेगा, जैसे माल डालेगा ऐसा माल निकलेगा प्रोडक्ट। तो लेकिन ये अभी तक नहीं, अभी एक अलग प्रोडक्ट निकलना चाहिए। तो जाकर के भगवान को प्रार्थना की, तो भगवत पास ऐसे कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने एक बार तपस्या करने गया था, तो देवताओं ने जाकर के वो जहां तपस्या करा था वहां पहुंच गए, पेड़ में चिड़िया बन करके हरे कृष्णा करने लगे, तो डिस्टर्ब गया, हुई डिस्टर्बिंग, हरे कृष्ण क्यों बोलता मुझे। तो जब उन्हें कंसेंट्रेट करना चाहता था अपने मंत्र के ऊपर, वो तभी हरे कृष्ण करते थे। दो तीन दिन प्रयास किया, बड़े डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब होकर आ गया घर में वापस, बोला तपस्या भी नहीं करने देते यार, सब जब पीछे पड़ गए। उनको नहीं पता था देवताओं कर रहे, कौन कर रहे, चिड़िया गुस्सा, चिड़िया के बच्चे क्या करेगा, वापस आएगा, बोला इस बार तपस्या नहीं होगा। वापस आया तो उनके रानी कयादव पूछे बेडरूम में, अलग से पूछे उनको रात को, पूछे स्वामी क्या बात हो गया, आ गए अब तो तप करने में उदय छोड़े ना। अरे क्या कहूं, वो बताए क्या हुआ ना, बड़े जितने प्रयास किया करने के लिए, कोई चिड़िया आकर के हरे कृष्ण बोलने लगे, पता ना कृष्ण के नाम से बहुत चिड़ है, कोई कृष्ण का नाम आकर बोलते रहते, मैं सुन सुनकर डिस्टर्ब हो गया, हो नहीं पाया। तो ही बात करते करते बेडरूम में कयादु ने कंसीव की थी, तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने उनको बता रहे थे कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के बारे में दोनों स्वामी स्त्री चर्चा कर रहे थे, उसी से कयादु के गर्भ हुआ, तो कृष्ण नाम के प्रभाव से वो दोनों ही बात करते थे, भी दोनों ही असुर असुरुणी थे, फिर भी कृष्ण के नाम का ये अद्भुत प्रभाव है, वो काम आसक्त होते समय में कृष्ण के चर्चा करने लगे, वो भी वो मैं डिस्टर्ब हो गया, इसलिए बता रहा हूं, पूछ रही है इसलिए, इसके प्रभाव से गर्भ में जो आत्मा आया वो कृष्ण शब्द कृष्ण भक्त के साथ कृष्ण। दूसरा एक प्रमाण कहते हैं कि जो हिरण्यकश्यप गया था वैकुंठ आदि सब विष्णु को मारने के लिए दौड़ रहा था, ये भागवत वर्णन है अलग जगह में, कि भगवान विष्णु देखे हिरण्यकश्यप तो खूब गर्म होकर आ रहा है पिटने के लिए, मुझे मैं कहां जाऊं, पूरा घेराव कर दिया भगवान को, भगवान को घेराव करके जाकर मारने के लिए गया, भगवान बोले कहां जाऊं, डर के मारे भगवान ने एक छोटी मक्खी बन करके उनके नाक से घुस करके उनके अंदर बैठ गया जाकर, और वो तो बाहर ढूंढ रहा था, अंदर तो देखा नहीं था, अंदर बैठे थे भगवान, अंदर बैठे अनेक दिन तक अंदर रहे, बाहर निकले नहीं, बोले ढूंढ कर दो, और ढूंढ ढांड कर देखा कहीं है नहीं, तो अंदर बैठे उनके अंतकरण आंत में जाकर बैठे थे भगवान ने, भगवान जहां बैठेंगे वो तो पूर्ण पवित्र, भगवान सबसे पवित्र हैं, भगवान जब बैठे तो उनका आंतड़ी इतने पवित्र हो गया, इतने शुद्ध हो गया, इसी के लिए तो भगवान नरसिंह देव जब हिरण किसी को फाड़ फोड़ के मार दिए तो माला पहने वाले थे, बोले मैं यहां तो बैठा हूं कि माला ही नहीं पहना चाहिए, तो माला कहां से लाएंगे, बाजार से को लाएगा भी कौन, पहनाएगा कौन, तो तुरंत उसी आंत को निकाल करके उसी को पहन लिए, रक्त टपक रहा था, ताजा ब्लड टपक रहा था, वो तो आंत को उठा करके स्वयं पहन लिए माला, भगवान ने अपने अपने आंतड़ी की माला को पहनता है, कितने हो बोलते कि असुचि है ना, नहीं अपवित्र है, उसको छूने से ध्यान करना पड़ता है, मंदिर में मतलब, लेकिन वो किसको बोलेंगे, भगवान साक्षात स्वयं अपने हाथ से निकाल करके पहन ली माला, क्यों, क्योंकि परमम पवित्रम, भगवान यहाँ बैठ करके इतने प्यूरिफाय कर दिए थे उसको, इतने पवित्र कर दिए थे, वो पूजा के जो कि हम माला लेते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा पवित्र, इसलिए भगवान उस माला पहन। तो जो अंदर थे उनके, और वो लास्ट में जो छोटा बच्चा हुआ वो अंदर से ऑलरेडी पावर था, उसी पावर के अनुसार भगवत गुण संपन्न हुए शुरू से। नैसर्गिक मति दलाल महाराज का जन्म से कोई सिखाए पढ़ाए लिखा नहीं था, ऑटोमेटिक उनका मन भगवान का था। सुखदेव गोस्वामी तो ये कहते हैं कृष्ण ग्रह समझ, जैसे किसी ग्रह लगता ना, राहु शनि लग जाता है बोलते क्या कर शनि दशा चल रहा है, तो इसलिए बोलते कृष्ण एक ग्रह है, कृष्ण ग्रह ग्रहित ग्रहित मानस, कृष्ण रूपी ग्रह ने उसको लग गया था प्रहलाद, तो कृष्ण ग्रह लग गए तो वो क्या करे, कृष्ण कृष्ण करता ही रहा, ऐसे कृष्ण भक्त हो गया जन्म से, ग्रह दशा लग गया, छोड़ता नहीं था वो ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहित मानस कृष्ण ग्रह, तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कारण उनको जब उन्होंने सताया तब तो नरसिंहदेव आए। उसके पहले नरसिंहदेव को कोई आईडी नहीं था, कोई जानता नहीं था उनको ना। पहले बार नरसिंहदेव प्रकट हुए समुचे देवता ब्रह्मा तत्व उनको पहचान नहीं पाए, फटोफट तो पता नहीं लिए होंगे आजकल, नहीं तो फोटो कहां से आया कुछ तो खींचे होंगे कोई आर्ट किए होंगे, तो उन्हें पहली बार देखे, फर्स्ट टाइम ऐसे रूप देखे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो वर मांगा था ब्रह्मा जी के इंटेलिजेंस को चैलेंज किया था, आपके सृष्टि से ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मुझे मार सके, सचमुच ब्रह्मा जी की सृष्टि में थे नहीं, न पशु न मनुष्य न पक्षी न जल में न सर, इतने कंडीशन प्रूफ कर दिया था, डेथ प्रूफ ऐसे कर रखा था कि कोई उपाय नहीं था, लेकिन सारे कंडीशन को आज इट इज मेंटेन करते हुए नरसिंह भगवान अद्भुत रूपम रूप अद्भुतम अति अद्भुत रूप प्रकट किए। तो हम लोग इस रूप के साथ संपर्क इसलिए बना लिए क्योंकि यही एक रूप है जो भक्ति के बाधा को विनाश करता है। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य, वो भगवान कहते हैं मैं आपके लिए देवकार्य के लिए नहीं आया कि उनके काम में, मैं केवल आता हूं भक्तों की जो सताएगा भक्ति के बाधा होगा तब उसको मिटाने के लिए पर्सनली आऊंगा, आप बाकी किसके लिए नहीं। तो जो भक्त होना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में जो बाधा होता है उस बाधा को मिटाने के लिए एकमात्र श्री नरसिंह देव हैं, वो स्वयं कहे और आए और किए। नहीं तो बाकी पूरे संसार में विघ्न राज करके गणेश जी को पूछते हैं, विघ्न विनाशक करके है ना, नहीं कोई भी पूजा करो अग्रपूज्य के रूप में, गणपति आह्वान तो सबसे पहले होगा ही होगा, कोई पंडित को बुलाओ कोई भी पूजा करे, गणपति पूजा बिना किसी पूजा करती कर ही नहीं सकते, सबसे प्रथम गणपति आवाहन होगा, गणपति पूजा कर विनाश है सारे संसार के जो विघ्न, संसार में क्या विघ्न होता है, भौतिक समस्या है ना, नहीं आध्यात्मिक से कोई लेन देन है नहीं उनको, उनको तो शरीर देह है, इस भौतिक समस्या के लिए उनको मिटाने के लिए सारे संसार जो प्रयत्नशील है, इसलिए उन्हें गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणपति आवाहन करते हैं इसलिए। और गणपति के ये शक्ति कहां से आया, गणेश भगवान के अंदर ये पावर कहां से आया कि ये संसार के समुचा भौतिक विघ्न को विनाश कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कहां से आ सकते हैं? यत्पाद पल्लव धियो, क्या है श्लोक, यत्पाद पल्लव क्या एग्जैक्ट लाइन, यत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ दंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यत्पाद पल्लव धिय ध्यान करते हैं, धारण करते, जत पाद जिनके पाद पल्लव को गणपति ने अपने कुंभ कुंभ मतलब आपने जो सर है, सर के ऊपर जो शुंड है ना, शुंड के अग्रभाव में कुंभ में हमेशा धारण किए, यत पाद पल्लव धियो, जिनको हमेशा धारण करने के कारण गणेश जी ने ये शक्ति प्राप्त किए कि तीन जगत के जगत त्रयस्य विघ्नंत विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य अलम, संपूर्ण रूपण तीन लोक के विघ्न को नाश करने का पवार वो प्लग में लगा है, इसलिए करंट आ रहा है। प्लग से हटा दे कहां से लगेगा, तो प्लग में लगा रखें। कौन सा प्लग है? जत पाद पल्लव जीव, इसी पाद पल्लव में सुन लगा रखें कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है, इसीलिए विघ्नं विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य, समस्त त्रि जगत के विघ्न को नाश करने का शक्ति ये प्लग इन है, इसलिए आता है। जिनके पाद पल्लव के ध्यान के धारण के कारण श्री गणेश भगवान त्रि जगत के विघ्न को नाश करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं, वही श्री नरसिंह देव है। नरसिंह देव के श्री चरण देव को धारण किया, उनसे शक्ति प्राप्त। तो इसे नरसिंह भगवान की स्तुति जो अग्रदेवता गणपति भगवान ब्रह्मादि जानने का सब करते हैं भाई, उन्हीं से शक्ति प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि के सृष्टि करने का जो शक्ति मुझे भी उन्हीं से मिला, मैं किया हूं सृष्टि का, बाधा में जो प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ होगा वो भी सब उनकी पूजा सेना से। तो इसलिए हम भी हरेक प्रकार से भक्ति के छोटे बड़े बाधा को विनाश करने के लिए श्री नरसिंह भगवान के शरण में जाना चाहिए, जाते ही हैं और जाने का हमारा प्रथा है। तो हम सब जानते हैं भक्ति तो अभी नौसिखियां हैं, सब शुरू करते हैं और कितने तकलीफ आता है, कोई लिस्ट करने के बोलने से वो तो लिस्ट बरकतते ही रहेगा, डेली डेली नया नया ऑर्पमेंट आते ही रहेगा, है ना। तो इसलिए समुच्चय भक्ति के आचरण में, भक्ति सेवा में जो शुभ विघ्न आता है, वो तो विघ्न को शुभ हटाना चाहते ना, नहीं रखना चाहते, चलेगा रहे थोड़ी देर, कोई उसको हटाना चाहते ना, ताकि हम ठीक ठाक से भजन सब कर सकूं। तो अगर सचमुच जब ठीक से भजन करना चाहते हैं, इस बाधा को हटाना चाहते हैं, तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ श्री नरसिंह देव का श्री चरण में शरणागत होना चाहिए। यही नरसिंह जयंती का हमारे स्कन में कथा है, इसी कारण हम करते हैं। और वही नरसिंह भगवान केवल प्रहलाद के कारण ही आए, और वो प्रहलाद उस जमाने में अपने क्लासमेट को जो बता रहे थे, जिनके कारण भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, जिनको रक्षा किए, जिनके भक्ति को विघ्न को नाश किए, वो भगवत कृपा सिक्त श्री प्रहलाद ने अपने क्लासमेट के साथ कोई दिलचस्प थोड़ी रखता, फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ तो नो डीलिंग, अंदर बाहर सब जो गुप्त बातें फ्रेंड के साथ कह देते ना, बाकी पब्लिक नहीं कह सकते हैं, बाकी दूसरे को अथेटिक नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रेंड को तो चल है ना। तो प्रहलाद महाराज जो फ्रेंड के सामने जो कहते हैं, यू आर इन एंड आउट, सब कह देते कोई दिक्कत। तो वो जो बातें हैं ये इसमें है, तो अभी समय हो चुका, उसके ऊपर फिर शाम को चर्चा करेंगे, निपित्र कभी करेंगे, है ना। बड़े महत्वपूर्ण है, मैं सोच रहा था कि नरसिंह भगवान बाकी तो सुनते, को ये प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है, प्रहलाद महाराज जो स्तुति है, एक तो जो आपने क्लासमेट को बताए, और पिताजी के डेथ होने के बाद में जो सारे देवताओं लोग हाथ जोड़े खड़े थे भगवान की स्तुति उन्होंने किए, ये दो इट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिनके कारण भगवान में आए उनका स्टेटमेंट क्या है उसको जानना ज्यादा जरूरी है ना। हरे कृष्ण। अभी क्यों, वो आज द्वादशी के पारण है ना, मुझे टाइम बता दे, बोलो 10 बजे तक है ना, आप तपस्या करेंगे ऋण कैसे बनना है क्यों प्रसाद नहीं बना, इसलिए तो इस श्लोक की शुरुआत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो अपने क्लासमेट को सिखाते हैं, सबसे पहले श्लोक इतने महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। यह शब्द का अर्थ है यहां। यह शब्द में दो अर्थ ध्वनित होता है। एक होता है यह मतलब आप जिस जोनी में है और जिस लोक में है। इस टाइम एंड प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस यह है। अभी आप मनुष्य रूप में हैं और इस मनुष्य लोक में है, मर्त्य लोक में है, तो यह इस स्थिति में जो धर्म, जिस धर्म का नाम क्या है, भागवत धर्म, इसी को आचरण करना चाहिए। कब करूं? मैं कुमार के समय से इस भागवत धर्म को आचरण करना चाहिए। यही ले देखकर कहते हैं कुमार अवस्था जानते हैं किसे कहते हैं? एक बाल्य, कुमार, ओगंड, फिर जौवन, किशोर। तो बाल्यावस्था 5 साल तक होता है, बच्चा रहता है। 5 से 10 साल तक कुमार अवस्था होता है, 10 से 15 या 14 तक ओवन है, उसके बाद में जौवन या किशोर। भगवान के 4 ही अवस्था होता है, उसके बाद किशोर आगे बढ़ते नहीं, उन्होंने वहीं स्टॉप। भगवान की दाढ़ी में जुड़ता ही नहीं, क्योंकि जौवन अवस्था में रहते हैं, उनको कोई शेविंग क्रीम से रिजर्व फेजर का जरूरत नहीं, इंजत नहीं, उठेगा नहीं। तो कुमार अवस्था से शुरू करना चाहिए, कुमार अवस्था से 5 से 10, इसी समय से भजन शुरू करना चाहिए, भागवत धर्म पालन करना चाहिए। ये प्रहलाद जी कहते हैं। अब हमारे संसार जितने बड़े बूढ़े माच्योर्ड है लोग, उनका सामने करो, अरे ये कोई उम्र है करने का? क्या कहेंगे? पागल हो की उम्र है, कब करूं? अरे जब दांत निकल जाए, आंख निकल जाए, बाल निकल जाए, सभी दुनिया में रिजेक्ट कर दे, आपको रिटायर्ड हो जाओ, कोई काम के लायक ना रहो, तब ये सब करना चाहिए। तो उनको पूछे, दादाजी आप सबके हो चुके ना, ये प्रश्न आ चुके ना, आ चुके ना, करते हैं क्या? तो दादाजी क्या बोले? हाँ मुझे बताता है कि तभी करना चाहिए, आप तो स्टेज आ चुके हैं, आप कर रहे हैं क्या? दो ही दादा दादी को भी नहीं करना, दिन रात गाली देते रहेंगे, चाय खाते रहेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि दादा दादी बनो तब करना। तो इसलिए तथा कथित दादा दादी उनके फेर में मत पड़ो, है ना, उसको झूठे सलाह देते हैं। प्रहलाद महाराज जिस ऐसे परम भक्त हैं, जिनके आने से पहले उनके भविष्यवाणी भगवान ने किए, बोले उन्हीं के लिए मैं आऊंगा, सारे देवताओं के लिए, आप लोग के लिए नहीं आऊंगा। कितने बड़े भगवत भक्त होंगे जिनके लिए उनके जन्म से पहले भगवान बोले मैं अगर आऊंगा तो अभी वो जो बेटा होने वाला है उनके लिए, अब जन्म नहीं हुआ था एडवांस। और जिनके प्रकट होने के लिए सारे देवताओं में फ्रॉम देयर कोर ऑफ देयर हार्ट वो प्रार्थना करते थे, कोई भक्त को प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हम उनके शत्रु हिरण्य कश्यप के थे, क्योंकि भगवान ने बोले तुम्हारा ही प्रोडक्ट होगा, तेरा ही बेटा होगा। हुआ जन्म से पहले जिनका सारे देवता, सारे भगवान, ऋषि मुनि जिनको प्रणाम करते थे, जिनको अपेक्षा करते थे, और जन्मत में बताया किस रहस्यमय है, भगवान स्वयं ही प्रह्लाद बनकर प्रकट हुए हैं। और नहीं, अब जब मातृ गर्भवती कयादु गर्भ में प्रह्लाद जी थे, गर्भावास था, तो इंद्र ने उनको पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन वो भी आवर्षण नहीं कर रहा था। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, मूर्ख आजकल के समाज में तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे ना, कि देखिए प्रह्लाद महाराज उनको शिक्षा दे रहे थे कि अगर इस मनुष्य जीवन को कोई सफल करना चाहता है, अर्थदम, बहुत अर्थपूर्ण है, बहुत काम के लायक है मनुष्य शरीर, उसको अगर कोई सफल करना चाहता है तो उनको ही बचपन से ही भागवत धर्म पालन करना चाहिए, बोलते आजकल समाज में बचपन से भागवत धर्म को सिखाता नहीं और उनको इतने कंटामिनेट टीवी दिखाना, मोबाइल टीवी और लैपटॉप और आजकल तो और क्या कैसे निकल गया मुझे पता नहीं, जो भी सब है तो ऐसे कंटामिनेट करते हैं उनको बचपन से, क्योंकि भागवत धर्म का प्रथम शिक्षा होता है ब्रह्मचर्य, जदि छंती ब्रह्मचर्यम चरंती, गीता भगवान कहते हैं जो चाहते हैं भागवत धर्म पालन करने के लिए उसका पहली आवश्यकता क्या है, ब्रह्मचर्य, उससे शुरू होगा नहीं तो नहीं। बोलते हैं उसको ना करके उनको इतने कंटामिनेट करते हैं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो नहीं दिया जाता है, उल्टी ट्रेनिंग देते हैं, कोई बात नहीं ये लोक संख्या वृद्धि समाज के तकलीफ के कारण है इसलिए ज्यादा लोग पैदाने करना है और अवर्सन की शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग सारे बढ़ावा देते हैं। भ्रूण हत्या, जन्म होने से पहले बच्चे को गर्भ में मार दिया जाए, कितने घातक नृशंसकारी है, उसी को सिखा देते हैं, बढ़ावा भी देते हैं, स्टैंड अप करते हैं ना, कि उनको तालीम दे कि तुम अपने जीवन को संयम करो, समादमा तपो सोच, इस प्रकार शिक्षा ना दे करके, इंद्रिय नगर शिक्षा दे करके खुल करके इंद्रिय भोग करो और मारो, बच्चों को जन्म होने से पहले मार डालो, महाघातक पापी निशंस क्रिया से शिक्षा देते हैं तो समाज में कैसे आशा कर सकते हैं सुधार। लेकिन ये भयानक असुर आसुरिक साम्राज्य में भी प्रह्लाद महाराज अकेले सिंगल हैंडेडली उन्हीं के हेडक्वार्टर में बैठे हुए, अपने बाप ही सरकार था, अकेले उन्हें बचपन की अवस्था में वो ही कैपिटल सिटी में ही प्रीचिंग शुरू कर दी और ऐसे सफल प्रीचिंग हुआ, सारे बच्चे मतून उनको बेस रेंट लेकर खोलना नहीं पड़ा ऐसे तो उन्होंने इस प्रकार पिचिंग किए और वही समझा दिए कि ये जो भागवत धर्म है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी आवश्यकता है, और ये भागवत धर्म केवल मनुष्य शरीर से ही आचरण किया जा सकता है, बाकी कोई शरीर द्वारा भागवत धर्म आचरण नहीं किया जा सकता। देह धर्म तो सबका देह होगा लेकिन भागवत धर्म इज ओनली बाय ह्यूमन बीइंग ओनली, तो इसलिए अभी आपका यह शरीर आपके मनुष्य शरीर में हो इसलिए अभी करो, और अभी आपका कुमार अवस्था भी है अभी करो, क्यों करें, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ना हमें समझने वाला नहीं, दुर्लभ है, वारी दया क्यों रिया हम तो ऐसे ही बोले नहीं, इस मनुष्य जन्म शरीर जो है मिलने के लिए बोले एक ब्रह्मा जी ने जो विधान सृष्टि किए हैं उनका एक फॉर्मूला है, 84 लाख प्रकार के डिजाइन फ्रेम है उनका पास, अब जो बनाता फ्रेम कैसे से बनाता ना, कितने वैरायटी सब बड़ी है शरीर है, 84 लाख सब पीसेस, तो शुरुआत होता है इवोल्यूशन प्रोसेस, अब जलचर से शुरू होता है, जल उद्भिद इसे बढ़ते 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 आस हैं 84 लाख पर्यंत है, जो 80 लाख जोनी है वो मनुष्योत्तर जोनी है, मनुष्य से नीचे का, वो इस जोनी में कर्म नहीं है, वो कुछ भी करे प्रमोशन होता रहेगा, और हरेक जोनी में हरेक शरीर में 100-100 साल का नियम है रहना, तो 80 लाख शरीर में आपको जन्म लेना पड़ेगा और हरेक शरीर में 100-100 साल जीना पड़ेगा सुख दुख होकर, तो कितना दिन अब क्या करना पड़ेगा, एक बार मनुष्य शरीर पाने के लिए कितना वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा, 80 लाख इंटू 100 केवल इतने गैप में एक बार मनुष्य शरीर मिलने का चांस, वो भी डाउट क्योंकि इसके बाद में आपका कर्म का मनुष्य कर्म लग जाता है, अभी मनुष्य शरीर अब मिला है अगर उसको मिसयूटिलाइज कर दिए अब नहीं कर पाए ऐसे गड़बड़ करके गवा दिए तो नेक्स्ट कर लूंगा, ऐसे कर लेकर कितने दिन वेट करना पड़ेगा, केवल 80 लाख से 100 से कितने 8 करोड़ 80 करोड़ साल तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा ओनली 80 करोड़ तब भी जो यस हाँ वो तो लंबे समय से जीते कोई कम समय में जीते हैं तो सब मिलकर के 100 साल माना जाए एवरेज एवरेज 100 साल लेकर के एवरेज 80 करोड़ साल लेकिन 80 करोड़ साल के बाद में जो मनुष्य शरीर मिलेगा तारा मध्य चेतन महाप्रभु कहते हैं कि कई प्रकार के मनुष्य शरीर हैं जो कोई गरीले फटले टाइप के आदिवासी होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं होता पशु ही समझ रूप केवल मनुष्य है लेकिन उनको कोई मतलब है किससे पशु ही है रूप केवल डिजाइन केवल मनुष्य को मिल गया लेकिन 100% पशु की तरह करते बोले ये ना बन जाए बोले उनमें भी अगर बन गया उनको भी शोषण करना पड़ा उससे बट करके थोड़े सभ्य मनुष्य जगत में आए उनमें भी बोले 5 ग्रेड है तारा मध्य पुलिंद सबर बौद्ध और क्या क्या कितने जात पात के अगर वो जात में फिर जात में जैन बुद्ध पे बन गए तो वो भी उसमें भी था वो भी नहीं उस नास्तिक है नास्तिकों के आगे तो नास्तिक की कैटेगोरी वो मरेंगे उसमें नहीं आस्तिकों के कैटेगोरी में आएंगे आस्तिक बोलते हम धर्माचारी हम महाधर्म परायण वो सारे मुंह में धर्म धर्म बोलते धर्म कुछ नहीं जानते ऐसे मतलब सो रया चेतन महाप्रभु ये तो केवल मनुष्य शरीर की बात का मनुष्य शरीर के बाद में चेतन महाप्रभु सनातन शिक्षा में कहते हैं कि इतने रेयर कोई सिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं कोई नौकरी में चक्कर में पड़ते हैं कोई शादी के चक्कर में पड़ते हैं कई चक्कर में पूरा मनुष्य यूटिलाइजिंग देयर ह्यूमन बॉडी लाइक एनीथिंग और उसके बाद में एक मनुष्य जो समझ करके भक्ति करना भागवत धर्म पालन करना चाहेगा वो तो इतने दुर्लभ है कि क्या बताऊं एक तो मनुष्य शरीर ही पाना दुर्लभ है तो उसमें ये धर्म तो दुर्लभ हूं इतने रेयर तो आज इतने कष्ट है तदपि उसके ऊपर भी अध्रुवम वो मनुष्य शरीर कब तक रहेगा कोई गारंटी है क्या गारंटी कार्ड मिला है ये बड़ी का कि अब तक है तब तो रिपेयरिंग दे देना है ना यहाँ प्रोडक्ट खरीदते हैं कोई अगर इसने गारंटी कार्ड के अंदर गारंटी टाइम के भीतर गड़बड़ हुआ तो चेंज कर देंगे नहीं तो रिपेयर करेंगे फ्री में इसे कोई मिला किसी गारंटी का कुछ नहीं है कंपनी की तरफ से गारंटी नहीं है लेकिन ये गारंटी है क्या एक्सपायरी डेट होगा ये गारंटेड है अध्रुवम कब तक रहेगा किसी को नहीं पता थोड़ा पता होता तो हम कुछ व्यवस्था कर लेते व्यवस्था करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा प्लीज वेट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेटिंग अध्रुवम किसी भी मुहूर्त में किसी भी समय में धक्का मार के निकाल देंगे गेट आउट कोई जरूरी नहीं कि बूढ़े होना पड़ेगा आपको एनी टाइम इट बी किक्ड आउट इसलिए अध्रुवम लेकिन अर्थदम पूरे मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले दिस इज द ओनली चांस इसी के द्वारा किया जा सकता नाउ इट इज अप टू यू बॉल इज इन योर कोर्ट आप चाहें इसी टेम्पररी कब चला जाए इसी क्षणिक समय में समुच्चय जीवन सर्वस्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है नहीं तो करोड़ों करोड़ों सालों तक गवा करके मरते रहो अब आपके तो ये पहले श्लोक को अगर ढंग से हम चर्चा करें हमारे अंदर सचमुच सीरियसनेस आ जाएगी रियली कोई भी इस श्लोक को चर्चा करेगा वो तो निश्चित रूप से गंभीर हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करो थोड़ा पक जाओ गंभीर बन जाएंगे तो इसीलिए प्रहलाद महाराज बिगिनिंग में इस श्लोक को कहें तो मेक देम सीरियस अडियानुष को सीरियस कराने के लिए श्लोक तो श्लोक के ऊपर आप यथेष्ट सोच करो विचार करो तो गंभीर बन जाना क्या करना चाहिए हरे कृष्ण